इशिका की कंपनी को पब्लिक हुए पूरा एक महीना बीत चुका था। इस एक महीने में उसने पार्थ के प्रोजेक्ट की रिसर्च को पूरा कर लिया था और सारे पेपर्स पार्थ को सौंप दिए थे। दूसरी ओर पार्थ ने अपनी दवाइयों के प्रोडक्शन को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि वो जल्द से जल्द अपने प्लान के तहत इशिका और अभिमन्यु को बर्बाद कर सके। पार्थ को प्रोजेक्ट सौंपने के बाद इशिका ने थोड़ा सुकून महसूस किया था। वो सीधे राधिका के पास उनके कमरे में पहुंची। जिस दिन केशव ने राधिका को इनडायरेक्टली प्रपोज किया था, तब से राधिका ने न तो केशव से बात की थी और न ही उनसे मिलने गई थी। इशिका भी पार्थ के प्रोजेक्ट की व्यस्तता के कारण राधिका और केशव को समय नहीं दे पा रही थी। आज जैसे ही इशिका फ्री हुई, वो सबसे पहले राधिका के पास पहुंची। उसे अचानक अपने कमरे में देखकर राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैडम का प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और अब अपनी माँ की याद आ ही गई। ये कहते हुए राधिका ने इशिका को अपने पास आने का इशारा किया। इशिका तेजी से राधिका के पास गई और उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। राधिका धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी। इशिका की आंखें बंद थीं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। मैं सचमुच बहुत थक गई हूँ। इस एक महीने में मैंने किसी को ठीक से समय नहीं दिया। अभिमन्यु तो अलग से नाराज है। आपको भी मेरी वजह से सबकी शिकायतें सुननी पड़ रही हैं। डैड भी कब से मिलने के लिए बोल रहे हैं, पर मैं मिलने नहीं जा पाई। इशिका ने सिर उठाकर राधिका को देखते हुए कहा, हाँ ये तो गलत बात है। काम के चक्कर में तुमने खुद को कभी समय नहीं दिया। अब तो सुधर जाओ, माँ बनने वाली हो, तुम्हें घर और काम को एक साथ संभालना सीखना होगा। अब तुम अकेली नहीं रही इशिका, राधिका ने प्यार से समझाया। हाँ पहले अकेली थी तो कोई बाइंडिंग्स नहीं थी, ना कोई रोक टोक करने वाला था और ना ही कोई पूछने वाला। खैर चिंता मत कीजिए, मैं सबकी शिकायतें मिटा दूंगी। सबसे पहले डैड से शुरुआत करते हैं, शाम को उनसे मिलने चले, इशिका ने उठकर बैठते हुए पूछा। वो काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। राधिका ने गहरी सांस ली और सोच में पड़ गई कि इशिका को क्या जवाब दें। इशिका अच्छे से समझती थी कि उस दिन के बाद राधिका ने केशव से बात नहीं की होगी। राधिका ने इशिका को सीधे ना टालते हुए बहाना बनाया। बेवकूफ़ लड़की, अपने डैड से पहले अपने पति के बारे में सोचो। अभिमन्यु की आंखों में नाराज़गी साफ दिखती है। जानबूझकर रात को ऑफिस से लेट आता है और सुबह तुम्हारे उठने से पहले चला जाता है। तुमने तो अपना रूटीन बिगाड़ ही लिया है और गुस्से में उसने भी अपना रूटीन खराब कर लिया। राधिका की बात सही थी। शुरुआत में अभिमन्यु ने इशिका को काम और हेल्थ के बीच बैलेंस करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इशिका की ज़िद के आगे वो नाराज़ हो गया था। इशिका भी राधिका की बात से सहमत थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मॉम, अब तो मैसेज में भी फॉर्मली बात होती है और कॉल भी नहीं करता। बच्चे होने से पहले ही ये हाल है, बच्चे हो जाने के बाद कहीं उसका मुझसे मन तो नहीं भर जाएगा। अचानक इशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। इशिका का चेहरा देखकर राधिका हंसते हुए बोली, इस तरह मुंह बनाने की जरूरत नहीं, वो तुमसे बोर नहीं हुआ है और ना ही बच्चे हो जाने के बाद तुम्हें भूल जाएगा। पागल लड़की, उसे तुम्हारे साथ समय बिताना है और तुम उसे इग्नोर कर रही हो, इसीलिए वो नाराज है। क्या सच में? इशिका ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर पूछा। फिर वो कुछ पल रुककर बोली, अच्छा माँ, क्या मैं उसे सरप्राइज देने के लिए ऑफिस जाऊँ? वो मुझे वहाँ देखकर खुश हो जाएगा ना? अच्छा आइडिया है, पर कहीं वो नाराज ना हो जाए, उसने तुम्हें ट्रैवल करने से मना किया है, राधिका ने कहा। पर पिछले 2 महीनों से मैं कहीं गई भी तो कहाँ हूँ, इशिका ने जवाब दिया। उसने कुछ देर सोचा और फिर फैसला सुनाते हुए बोली, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अभिमन्यु को सरप्राइज देने जा रही हूँ, आप मेरी तैयार होने में हेल्प कीजिए। राधिका ने हामी भरी और इशिका को उसके कमरे में ले गई। अब तक इशिका घर पर थी तो उसने अपनी ड्रेसिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब जब उसने ध्यान दिया तो देखा कि उसके सारे कपड़े अभिमन्यु ने मैटर्निटी के हिसाब से रखवाए थे, जो काफ़ी ढीले ढाले थे। इशिका ने उन कपड़ों को देखकर मायूस आवाज में कहा, अब क्या ऐसे कपड़े पहनकर उसे सरप्राइज देने जाऊंगी? तो कैसे कपड़े पहनने हैं तुम्हें? तुम कुछ भी पहनो, उसे अच्छी ही लगोगी। रुको, मैं सिलेक्ट करने में हेल्प करती हूँ, राधिका ने प्यार से इशिका का नाक खींचते हुए कहा और फिर वार्डरोब में उसके लिए कपड़े ढूंढने लगी। जब राधिका इशिका के लिए कपड़े देख रही थी, तभी इशिका की नज़र वहां लगे आईने पर पड़ी। उसकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना शुरू हो चुका था। ट्विंस होने की वजह से उसका बेबी बम्प भी अच्छा खासा आगे आ गया था। हालांकि उसके चेहरे और बाकी फिजिक में कोई खास फर्क नहीं आया था, लेकिन उसका पेट कुछ ज्यादा ही उभरा हुआ लग रहा था। इशिका ने गहरी सांस लेते हुए उदास चेहरा बनाकर कहा, रहने देती हूँ माँ, वो घर आएगा तभी सरप्राइज दे दूंगी। राधिका इशिका की इनसिक्योरिटी को समझ रही थी। प्रेगनेंसी में अक्सर लड़कियों को लगता है कि वजन बढ़ने की वजह से उनके पति का प्यार कम हो जाएगा। ऊपर से इशिका के काम में व्यस्त रहने के कारण अभिमन्यु और उसके बीच कम्युनिकेशन गैप भी आ गया था। राधिका इशिका के पास आईं और उसे गले लगाकर सहलाते हुए बोली, ओवरथिंकिंग मत करो, तुम जानती हो कि प्रेगनेंसी में हस्बैंड को अपनी वाइफ पर ज्यादा प्यार आता है। क्या सच में? इशिका ने भौहें उठाकर पूछा। जवाब में राधिका ने हल्का मुस्कुराकर प्यार से हाँ में सिर हिला दिया। पिछले 2 महीनों में इशिका और अभिमन्यु ठीक से मिले तक नहीं थे। इस वजह से इशिका के मन में ये इनसिक्योरिटी घर कर गई थी कि अभिमन्यु उसे इस हाल में देखकर दूर भागेगा। लेकिन राधिका के समझाने पर वो अभिमन्यु को सरप्राइज देने के लिए राजवंश एम्पायर जाने को तैयार हो गई। इशिका ने राधिका के सिलेक्ट किए हुए फ्रॉक को पहना जो काफ लेंथ का था। लूज होने की वजह से उसका पेट ज्यादा उभरा हुआ भी नहीं लग रहा था। राधिका ने इशिका के बालों में आगे से फ्रेंच प्लेटिंग बनाई और हल्का फुल्का मेकअप करके उसे तैयार किया। हालांकि इशिका अभी भी सबके सामने राजवंश एम्पायर जाने से हिचकिचा रही थी, लेकिन राधिका के जोर देने पर वो अपने कदम पीछे नहीं खींच पाई। तैयार होने के बाद इशिका दोपहर के करीब 2 बजे राजवंश एम्पायर के लिए निकल गई। उधर अभिमन्यु अपने केबिन में कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ व्यस्त था। लंच टाइम में पृथ्वी उसके पास लंच मेन्यू पूछने आया। पिछले 1.5 महीने से पृथ्वी अपने बॉस को पहले की तरह काम में डूबा हुआ देख रहा था। ना उन्हें खाने का होश रहता था और ना ही वक्त पर घर जाने का। इसका कारण वो अच्छे से समझ सकता था। पृथ्वी अभिमन्यु के पास आया और धीमी आवाज में बोला, सर लंच के लिए क्या ऑर्डर करूं? कुछ भी कर दो पृथ्वी, फिलहाल मेरे पास इतना समय भी नहीं कि लंच भी कर सकूं। मेन्यू डिसाइड करने का टाइम कहां से होगा? अभिमन्यु ने उसकी ओर देखे बिना कहा। सर आप सुबह से लगे हुए हैं, एक नॉर्मल कॉफी ब्रेक भी नहीं लिया। आपके बाद में कहने की वजह से अब 3 बजने को आए हैं। मैं लंच लेकर आ रहा हूँ, आप टाइम निकाल लीजिए, पृथ्वी ने चिंता भरे लहजे में कहा। उसे लग रहा था कि पुराना वक्त लौट आया हो। पहले भी वो अभिमन्यु को खाने पीने के लिए फोर्स करता था, तब जाकर वो थोड़ा समय निकालता था। पृथ्वी के कहने पर अभिमन्यु को मजबूरन अपना काम छोड़ना पड़ा। इस बीच जब पृथ्वी लंच लेकर अंदर आया, उसके ठीक पीछे इशिका भी वहां पहुंच गई। इशिका को अचानक देखकर पृथ्वी और अभिमन्यु दोनों हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। इशिका को एक पल के लिए लगा कि वे उसके लुक की वजह से उसे इस तरह देख रहे हैं। इशिका ने अपने कपड़े ठीक किए और गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, मैं क्या कोई एलियन नजर आ रही हूँ जो तुम दोनों मुझे इस तरह घूर रहे हो? प्रेगनेंसी में थोड़ा वेट बढ़ जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे इस तरह देखोगे।
पृथ्वी ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। वो धीरे से बोला, सॉरी मिसेज राजवंश, एक्चुअली आपको अचानक यहाँ देखकर हैरानी हुई, इस वजह से। वो बोलते बोलते रुक गया क्योंकि इशिका उसे घूर रही थी। पृथ्वी ने लाचार नजरों से अभिमन्यु की ओर देखा और फिर बाहर चला गया। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जिसे वो मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। वो इशिका से नाराज था, लेकिन उसके अचानक आने से उसे खुशी भी हो रही थी। इशिका को लग रहा था कि उसके बढ़े हुए वेट की वजह से अभिमन्यु का प्यार कम हो गया है, लेकिन अभिमन्यु को इस वक्त वो बेहद क्यूट लग रही थी। उसका गुस्सा और प्रेगनेंसी ग्लो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। पृथ्वी के जाने के बाद इशिका ने अभिमन्यु की ओर देखा। अभिमन्यु ने तुरंत अपने चेहरे के भाव सख्त कर लिए। इशिका उसके पास आते हुए बोली, अब क्या तुम्हें भी 2 बातें सुनानी पड़ेंगी ताकि तुम मुझे इस तरह देखना बंद करो? अभिमन्यु ने सिर हिलाया और कहा, तो तुम बता दो किस तरह देखना है डॉक्टर अनामिका? फुर्सत मिल गई तुम्हें अपने प्रोजेक्ट से, या आज फिर रिसर्च के लिए कोई बुक लेने आई हो? अभिमन्यु ने बातों बातों में उसे ताना मारा। पिछले 2 महीनों में इशिका राजवंश एम्पायर में 1-2 बार जरूर आई थी, लेकिन लाइब्रेरी से डेटा कलेक्ट करने के लिए। तब भी वो अभिमन्यु से मिले बिना चली गई थी। मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, इशिका ने अपने बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आज डॉक्टर अनामिका को अपने बेचारे पति की याद कैसे आ गई, अभिमन्यु ने तंज भरे लहजे में कहा। इशिका को हमेशा से अकेले रहने की आदत थी, इस वजह से वो अपने वर्क और शादी को पहले ही एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। ऊपर से बच्चे भी होने वाले थे, तो वो पूरी तरह अपने शेड्यूल में फंस गई थी। इशिका ने उसे देखकर मुंह बनाया और बोली, मुझे भूख लगी है, लंच मंगवाओगी या ऐसे ही ताने मारकर मेरा पेट भरने वाले हो? बिल्कुल डॉक्टर अनामिका, अब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हमारे छोटे से ऑफिस में आई है तो कुछ तो खातिरदारी बनती है, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। वो जानबूझकर इशिका को बार बार डॉक्टर अनामिका कहकर चिढ़ा रहा था। इशिका ने उसे घूरा और फिर खुद को शांत किया। उसने मन ही मन कहा, कमॉन इशिका, तुम यहाँ उसे मनाने आई हो, गुस्सा होने के लिए नहीं, ये बिहेवियर तो वैसे भी ऑब्वियस था। अभिमन्यु ने कॉल करके उनके लिए खाना मंगवाया। फिर वे दोनों अभिमन्यु के ऑफिस में बने डाइनिंग एरिया की ओर गए। अभिमन्यु नाराज होने की वजह से जानबूझकर इशिका से दूर बैठा। इशिका को वो लम्हा याद आ गया जब उनकी शादी रिवील हुई थी। तब वसुधा के कहने पर अभिमन्यु ने मजबूरी में उसे डिनर के लिए अपने केबिन में बुलाया था, और उस वक्त भी वो उससे इतना ही दूर बैठा था। खाना आने पर अभिमन्यु खुद अपनी प्लेट में सर्व करने लगा। उसने इशिका की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इशिका ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, नाराज हो? अच्छा, ये भी अब बताने की जरूरत है, मैं नाराज हूँ बहुत ज्यादा और पहले ही बता रहा हूँ आसानी से मानने वाला नहीं हूँ। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी डॉक्टर अनामिका। अपनी प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स को साइड में रखना होगा अगर अपने डियर हस्बैंड को मनाना है, अभिमन्यु ने साफ साफ कहा। इशिका लाचार नजरों से उसकी ओर देख रही थी। आज से पहले अभिमन्यु कभी इतना नाराज नहीं हुआ था। ऊपर से इस बार गलती भी इशिका की ही थी, उसने अभिमन्यु को समय नहीं दिया था, लेकिन जो भी हो उसे अभिमन्यु को मनाना ही था। एक दो चैप्टर थोड़े लाइट रखे हैं ताकि बड़ा धमाका होने से पहले आप ये ना कहें कि इशिका और अभिमन्यु के मोमेंट्स नहीं दिखाए। चलिए बताइए इशिका को अभिमन्यु को मनाने के लिए क्या करना चाहिए। आप समीक्षा में ये लिख सकते हैं, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, अगले चैप्टर पर मिलते हैं।